उन सब में से आस्था की नज़र ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव को देखते ही आस्था एक झटके में उसे पहचान गई और वो खुद को रोक नहीं पाई। वो सीधा ध्रुव के सामने जाकर खड़ी हुई और कहने लगी, आप ध्रुव है ना, ध्रुव सक्सेना, फेमस हार्ट सर्जन। आस्था की बातें सुनकर ध्रुव मुस्कुराया और कहा, जी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरा नाम ध्रुव सक्सेना है और मैं फेमस हार्ट सर्जन भी हूँ, लेकिन मुझे खुशी हुई भाभी कि आप मुझे जानती हैं। बाकी तीनों जलन से ध्रुव की ओर देखने लगे। मन ही मन सोचने लगे, लगता है भाभी ध्रुव से काफ़ी इम्प्रेस है, क्योंकि वो ध्रुव को जानती भी है। हो सकता है ध्रुव और भाभी की दोस्ती जल्दी ही हो जाए। दादाजी आगे आए और आस्था के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी क्या तुम जानती हो इस नालायक को? दादाजी की बात सुनकर आस्था हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगी और कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत फेमस हार्ट सर्जन हैं। इनसे मिलना तो मेरा ड्रीम था, मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुझे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कहकर आस्था ध्रुव की ओर मुस्कुराकर देखने लगी। दादाजी ध्रुव की ओर गर्व भरी नज़रों से देखते हुए बोले, हमें तो आज पता चला कि ये नालायक कितना कामयाब और फेमस है, वरना हम तो इसे छोटा मोटा डॉक्टर ही समझते थे। ध्रुव ने अपनी शर्ट के कॉलर खड़े किए और कहा, दादाजी आपने तो मुझे शुरू से ही हल्के में लिया है। भाभी नहीं, ना जाने कितने ही सारे यंगस्टर्स हैं जो मेरी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, पता है आपको? और आप हैं कि मुझे जब देखो घर का सारा काम करवाते रहते हैं। ध्रुव ने बेचारा सा मुंह बना लिया। तीनों आगे आए। आहान बेचारा सा मुंह बनाकर कहने लगा, अगर मुझे पता होता कि भाभी को डॉक्टर इतने ज़्यादा पसंद है तो मैं कॉलेज जाने के बजाय डॉक्टर ही बन जाता। सुमित और आकाश ने कहा, हाँ अगर हमें पता होता तो मैं बिजनेसमैन बनने के बजाय मैं भी कोई ना कोई छोटा मोटा डॉक्टर ही बन जाता। आकाश बोला, अगर ऐसी बात थी तो मैं भी 7-स्टार होटल खड़ा करने के बजाय कोई डॉक्टर या नर्स का ही काम कर लेता। तीनों अलग अलग तरीके से इस तरह की बातें करने लगे थे। आस्था उन सबकी शक्लें, उनका बेचारा सा मुंह और बेतुकी बातें देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आस्था को हंसता हुआ देखकर विचारों भी मुस्कुराने लगे। कल रात अरमान पर गोली चलाई जाने पर आस्था बुरी तरह से डर गई थी और उन सबको आस्था के लिए काफ़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अब आस्था का सूरत और सीरत देखने के बाद उन सबको इस बात का यकीन हो चुका था कि उनके खड़ूस और राक्षसी भाई की ज़िंदगी में आस्था जैसी ही लड़की आनी चाहिए थी जो शायद अरमान के लिए ही बनी थी, क्योंकि अगर अरमान आग है तो आस्था पानी की तरह एकदम शीतल थी। आलोक जी बोले, आस्था बेटा मैं तुम्हें इस परिवार से मिलाता हूँ, अब तक तुम्हें इस बात का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि इस घर में कोई और महिला नहीं है और मैं अरमान के साथ साथ अब तुम्हारा भी दादा हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। अब तुम्हारे सामने जो ये चार बेवकूफ़ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं इनके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। सच बताऊँ तो ये सब मेरी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ना केवल मेरी फैमिली का बल्कि ये चारों मेरे दिल के भी बेहद करीब हैं। जितना प्यार मैं अरमान से करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा शायद मैं इन चारों से करता हूँ। दादाजी की बात सुनकर वे चारों मुँह खोले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ध्रुव ने सुमित से कहा, यार क्या तुमने भी वही सुना जो दादाजी ने हमारे बारे में कहा? सुमित ने कहा, हाँ यार मैंने भी वही सुना। आकाश बोला, कहीं हमने कल रात कुछ ज़्यादा ही तो नहीं पी ली थी जिसकी वजह से मैं सही से सुन नहीं पा रहा हूँ। आहान बोला, दादाजी ठीक तो कह रहे हैं, अरमान भाई से आज तक दादाजी ने कोई काम करवाया है क्या? एक भी काम नहीं करवाया अरमान भाई से। अगर कभी दादाजी को कोई काम कराना होता है तो वो हम चारों को ही तो बोलते हैं, अरमान भाई से तो उन्होंने आज तक कोई काम नहीं बोला, तो इसका मतलब साफ है दादाजी वाकई हमें बहुत प्यार करते हैं। आहान के स्पष्टीकरण पर बाकी तीनों लोग घूर कर आहान को देखने लगे। ध्रुव ने गुस्से से दांत पीसते हुए आहान से कहा, बेवकूफ़ इंसान, प्यार का काम से क्या लेना देना? दादाजी ने आगे कहा, आस्था बेटा ये आहान है, ये अरमान का कजिन ब्रदर है और मेरा छोटा पोता, ये हमारे साथ यही सिन्हानिया मेंशन में रहता है, ये अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है। आहान का परिचय देने पर आस्था ने मुस्कुराकर आहान की ओर देखा। दादाजी आकाश की ओर देखते हुए बोले, बेटा जो तुम्हारे सामने खड़ा है इसका नाम आकाश मल्होत्रा है और ये यहाँ के बहुत फेमस 7-स्टार होटल का मालिक है और हमारे पास वाली जो विला है वो इसी का है, इसे इसने ही खरीदा है, ये उसी में रहता है लेकिन हमारे कहने से ये अपने विला में कम सिंघानिया मेंशन में ज्यादा रहता है, यहाँ आसपास घर होने की वजह से सुबह का नाश्ता खाना डिनर यहीं करता है। दादाजी ने आकाश की ओर मुस्कुराकर देखा। आकाश बोला, दादाजी आप तो जानते ही हैं ना और मेरा दिल आपके पास थोड़ा ज़्यादा लगता है और आप भी मुझे विला में अकेले रहने नहीं देते हैं और वैसे भी मेरे पापा विदेश में रहते हैं और वो मुझसे कभी कभार मिलने आते हैं। आकाश की माँ की मृत्यु बहुत पहले ही विदेश में एक कार दुर्घटना में हो गई थी, उसके बाद आकाश हमेशा के लिए भारत में शिफ्ट हो गया क्योंकि विदेश में रहना उसके लिए अब नामुमकिन सा हो गया था जहाँ पर उसकी माँ की यादें थीं। दादाजी आकाश की ओर देखकर बोले, अरे बच्चा हम तो सिर्फ आस्था बेटी को आपके बारे में बता रहे हैं, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब मर्जी तब यहाँ आओ और यहाँ रहो। वैसे भी सिंघानिया मेंशन इतना बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आप सब बच्चों को रहने में कोई दिक्कत ना हो और चाहकर भी कोई हमसे दूर ना जा सके। तुम सारे बच्चे घर में रहते हो तो खुशहाली रहती है वरना पूरा घर काट खाने को दौड़ता है और हमने तो तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम अपने विला में जाते ही क्यों हो, परमानेंटली यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? आकाश ने कहा, दादाजी आप तो जानते ही है ना और मेरा काम कैसा है। मुझे कभी भी किसी भी समय काम से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे विला में आना जाना पड़ता है। दादाजी बोले, ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो करो। दादाजी सुमित की ओर देखकर बोले, बेटा जो तुम्हारे सामने खड़ा है सुमित अग्रवाल है, ये शहर के मशहूर बिजनेसमैन है। आप यकीन जानिए कम से कम 600-700 लोग इनके हाथ के नीचे काम करते हैं, लेकिन मजाल है जो इनमें इतना सा भी घमंड हो। दादाजी ने सुमित का गर्व से परिचय दिया। सुमित अपने बंगले में रहते हैं जो यहाँ से केवल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वहाँ पर ये अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अभी फिलहाल अरमान की शादी की वजह से कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट हुए हैं और इसे आप जानती हैं, ये ध्रुव सक्सेना यहाँ का बेस्ट सर्जन है। अपनी मेहनत के बलबूते पर इतनी कम उम्र में हार्ट सर्जन बन गए हैं। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने के लिए लोगों को अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी गुजारनी पड़ती है, लेकिन केवल 20 साल की उम्र में ये शहर के ही नहीं बल्कि इस देश के बेस्ट हार्ट सर्जनों में से एक है। दोस्तों, नॉर्मली किसी को फेमस हार्ट सर्जन बनने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है रियल लाइफ में, और उसकी उम्र कम से कम 30-35 साल के आसपास होती है। बट ये एक काल्पनिक बेस्ड नॉवल है तो आई होप आप लोग इसे उसी तरह से लेंगे। वाकई इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और बहुत ही मेहनती है। बड़े बड़े लोग इनसे मिलने के लिए आज भी तरसते हैं। आस्था मुस्कुराते हुए कहने लगी, दादाजी मैंने इनके बारे में काफी चीजें पढ़ी हैं, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, सच बताऊँ तो ये मेरे रोल मॉडल हैं। आस्था ध्रुव की ओर देखकर मुस्कुराने लगी थी। दादाजी ने आगे कहा, बेटा ये हमारा एक छोटा सा परिवार है और आज हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि आप इस परिवार का सबसे खास हिस्सा हो, क्योंकि आप इस घर की बड़ी बहू और अरमान की बीवी हो।
दादाजी की बात सुनकर आस्था का चेहरा एकदम से मुरझा गया। जो कुछ भी कल रात उसके साथ हुआ था उसकी आंखों के सामने फिर से वही यादें नजर आने लगी और उसके हाथों में रोएं खड़े हो गए थे। आस्था की नई फैमिली का इंट्रोडक्शन कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए दोस्तों माय ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी।